अध्याय 11 यशोधर्मा और हूण। यशोधर्मा मंदसौर के दो अभिलेख मालवा के राजा यशोधर्मा का उल्लेख करते हैं। इनमें एक लेख की तिथि 589 विक्रम संवत अर्थात 532 ईस्वी है। इस लेख के अनुसार यशोधर्मा ने पूर्वी और उत्तरी भारत के शक्तिशाली राजाओं को परास्त किया था। दूसरे अभिलेख में तिथि नहीं है, परंतु इसमें यशोधर्मा के विषय में अनेक तथ्य मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि यशोधर्मा के साम्राज्य में वे प्रदेश भी सम्मिलित थे जिन पर कभी गुप्तों और हूणों का भी अधिकार न रहा था। उसका साम्राज्य पूर्व में लोहित नदी से महिंद पर्वत तक और हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत था। हूण नरेश मिहिर कुल उसके चरणों पर अपना शीश झुकाता था। विंध्य और पर्यात्र के बीच के प्रदेश में यशोधर्मा का सामंत अभयदत्त शासन करता था। 532 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मा को विष्णुवर्धन भी कहा गया है। पिल्ट महोदय का मत था कि ये दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति थे। वस्तुतः विष्णुवर्धन यशोधर्मा का सामंत था, परंतु यह मत नितांत असंगत है, क्योंकि जहाँ यशोधर्मा को जैनेन्द्र कहा गया है, वहाँ विष्णुवर्धन को राजा धीराज और परमेश्वर कहा गया है। डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर सरकार आदि विद्वानों ने दोनों व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति माना है। बिना तिथि वाले दूसरे मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मा को सम्राट कहा गया है। तिथि वाले मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मा को औलिंकर वंशी कहा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंदसौर अभिलेख प्रशस्ति है, गौर वर्णन काव्यात्मक है, परंतु इस आधार पर यह कहना कि इन अभिलेखों के कथन पूर्ण रूप से अनैतिहासिक हैं, असंगत है। जैसा कि डॉक्टर मजूमदार ने कहा है, सार्वजनिक रूप से यशोधर्मा की सफलताओं का उल्लेख करने वाले इन अभिलेखों में सत्य का अंश अवश्य होगा। निश्चित रूप से यशोधर्मा अपने समय का एक महान विजेता था। अभाग्यवश मंदसौर के दोनों अभिलेखों में यह पता नहीं चलता कि अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना के पूर्व उसे किन किन राजवंशों से युद्ध करना पड़ा था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्वी भारत में लोहित तक नहीं किया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने गुप्त सम्राट को भी पराजित किया था। संभव है कि यह गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य रहा हो। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मा द्वारा अधिकृत ऐसे प्रदेश का उल्लेख करता है जो न तो गुप्तों के अधिकार में रहा था और न के अधिकार में। संभव है यह वाकाटक प्रदेश था। 540 ईस्वी तक वाकाटकों का पतन हो गया था। कदाचित यशोधर्मा ने उन्हें पराजित किया था। जिस राजा को यशोधर्मा ने निश्चित रूप से पराजित किया था वह हूण नरेश मिहिर कुल था। इस प्रकार यशोधर्मा ने गुप्तों वाकाटकों और हूणों को पराजित करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। एक मंदसौर अभिलेख की तिथि 532 है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह यशोधर्मा के चरमोत्कर्ष का काल था। 528 ईस्वी तक परिवाचक गुप्तों के अधीनता में मध्य प्रदेश में शासन कर रहे थे। अतः स्थिति के पूर्व यशोधर्मा का मध्य प्रदेश में उदय नहीं हो सकता। बंगाल से प्राप्त एक दामोदरपुर ताम्रपत्र की तिथि 224 गुप्त संवत अर्थात 543 ईस्वी है। संभवतः इसमें कुमारगुप्त तृतीय का उल्लेख है। यदि इस मत को स्वीकार कर लिया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि 543 ईस्वी तक पूर्वी भारत में यशोधर्मा की सत्ता समाप्त हो गई थी और वहां गुप्तों का राज्य था। इस आधार पर यह यशोधर्मा को 528 ईस्वी और 543 ईस्वी के बीच रख सकते हैं। इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि यशोधर्मा का अंत कैसे हुआ, परंतु इतना निश्चित है कि उसके उदय ने गुप्त साम्राज्य को बड़ा आघात पहुंचाया था। हूणों का उत्थान पतन। चीन के पश्चिम में हुंग नू जाति रहती थी। अनेक विद्वान हूणों को इसी जाति का मानते हैं। अन्य विद्वानों के मतानुसार हूण हुंग नू जाति से नहीं वरन एप्थलाइट जाति से संबंधित थे। कुछ विद्वान एप्थलाइट जाति को यूची जाति की शाखा मानते हैं। हूणों ने सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, परंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित कर दिया। वह घटना 455 ईस्वी के आसपास घटित हुई होगी। कालांतर में हूणों के एक योग्य नेता तोरमाण का उदय हुआ। गंधार से उसने पंजाब पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। 778 ईस्वी में लिखे जैन ग्रंथ कुवलय माला का कथन है कि तोरमाण समस्त विश्व का स्वामी था और वह चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित पवैया में रहता था। पंजाब में उसकी तांबे की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। पूर्व अभिलेख से भी पंजाब पर तोरमाण का अधिकार सिद्ध होता है। इसका कथन है कि राजाधिराज महाराज तोरमाण साइजू उल के शासनकाल में राट सिद्ध बुद्धि नामक एक व्यक्ति ने एक बौद्ध विहार बनवाया था। तोरमाण की तांबे की मुद्राएं पंजाब से यमुना नदी तक मिलती हैं। कौशाम्बी की खुदाई में तोरमाण की दो राज मुद्राएं मिली हैं। एक पर तोरमाण लिखा है और दूसरी पर हुड़ राज। इन राज मुद्राओं से अनुमान होता है कि तोरमाड़ ने उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग भी अपने अधिकार में कर लिया था। 165 गुप्त संवत का एरड़ अभिलेख में मिला है। इससे प्रकट होता है कि महाराज मातृ विष्णु एरड़ प्रदेश से बुद्धगुप्त को अधीनता में विषय पार था। इस अभिलेख में उसके भाई धन्या विष्णु का भी नाम मिलता है। एरड़ में तोरमाड़ के शासनकाल के प्रथम वर्ष का एक अन्य अभिलेख मिला है। इससे प्रकट होता है कि मातृ विष्णु के मृत्यु के पश्चात उसके भाई धन्या विष्णु ने एक मंदिर का निर्माण किया था। अभिलेख में तोरमाड़ का राजाधिराज महाराज शाही जोल कहा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 484 ईस्वी के पश्चात धन्य विष्णु ने बुद्धगुप्त के स्थान पर तोरमाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दूसरे शब्दों में तोरमाड़ ने पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया था। एरड़ में एक तीसरा अभिलेख मिला है। इसकी तिथि 191 गुप्त संवत है। इससे विदित होता है कि वीर राजा भानुगुप्त ने एरड़ में एक सुरमहत युद्ध किया था। इसमें उसका सेनापति गोपराज मारा गया था और उसके शव के साथ साथ उसकी पत्नी सती हो गई थी। इस अभिलेख में युद्ध के परिणाम का उल्लेख नहीं है, परंतु डॉक्टर राय चौधरी और डॉक्टर मजूमदार का अनुमान है कि इसमें भानुगुप्त विजयी हुआ था। यदि यह मत ठीक है तो स्पष्ट हो जाता है कि तोरमाड़ पूर्वी मालवा पर अधिक समय तक अपना अधिकार न रख सका था। 510 ईस्वी में पूर्वी मालवा में हुड़ आधिपत्य का अंत हो गया। इस निष्कर्ष की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि 528 ईस्वी तक परिवारजक वंश मध्य प्रदेश में गुप्तों की अधीनता में राज्य कर रहा था। राजतरंगिनी में भी तोरमाड़ का उल्लेख हुआ है, वहां उसकी मुद्राएं भी मिली हैं। इन साक्ष्यों से प्रकट होता है कि किसी समय तोरमाड़ के साम्राज्य में गंधार, कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग तक तथा पूर्वी मालवा सम्मिलित थे। इस प्रकार तोरमाड़ एक शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ। उसने राजाधिराज महाराज शाही जोल की उपाधि धारण की थी। डॉक्टर जसवाल का मत है कि जोल तोरमाड़ की ही उपाधि थी, परंतु ऐसा नहीं है। उरु जगन में प्राप्त दो अभिलेखों में मिहिर कुल के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि यह हुड़ो की उस शाखा का नाम था जिसके राजा तोरमाड़ और मिहिर कुल थे। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि तोरमाड़ में धार्मिक कट्टरता न थी। पूर्व अभिलेख का कथन है कि उसके शासन काल में रोट सिद्ध वृद्धि नामक एक व्यक्ति ने एक बौद्ध विहार बनवाया था। एरड़ अभिलेख से प्रकट होता है कि उसकी अधीनता में शासन करने वाले धन्य विष्णु ने नारायण का मंदिर बनवाया था। उसकी मुद्राओं पर सूर्य अंकित मिलता है। कुवले माला नामक जैन ग्रंथ से विदित होता है कि तोरमाड़ अथवा तोरराय जैन धर्म में भी आस्था रखता था। तोरमाड़ की मृत्यु संभवतः 511 ईस्वी के आसपास हुई। मिहिर कुल ग्वालियर अभिलेख से प्रकट होता है कि तोरमाड़ के पश्चात उसका पुत्र मिहिर कुल राजा हुआ। शुंगयुन नामक एक चीनी राजदूत 520 ईस्वी में गंधार आया था। उसने गंधार के विषय में इस प्रकार लिखा है, इस देश को ये थाज ने नष्ट कर दिया था और बाद को एक तेगिन को इस देश का राजा बनवाया गया था। इस घटना को हुए दो पीढ़ियां बीत चुकी हैं। इस राजा का स्वभाव क्रूर और प्रतिशोधपूर्ण था। उसने अत्यधिक बर्बर अत्याचार किए। वह बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करता, वरन दैत्यों की पूजा करना पसंद करता था। उसकी कीमीन के साथ युद्ध छेड़ा था उसने कीमीन के साथ युद्ध छेड़ा था संभवतः यह गंधार नरेश मिहिर कुल था। काशमश नामक यूनानी लेखक ने 535 ईस्वी और 547 ईस्वी के बीच क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है, भारतवर्ष में सुदूर उत्तर में श्वेत हूण रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में जाते समय गोल अपने साथ कम से कम 2000 हाथी और एक विशाल अश्वारोही दल ले जाता है। वह भारत का स्वामी है और जनता का उत्पीड़न करते हुए वह उन्हें कर देने के लिए विवश करता है। फिशर नदी हुड़ देश से भारत के राज्यों को पृथक करती है। इस वर्णन में उल्लिखित गोल मिहिर कुल था। उसका मूल राज्य सिंधु नदी के पश्चिम में था, परंतु उसने उत्तरी भारत को भी अपने अधीन कर लिया था। वेनसांग के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि मिहिर कुल ने गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य को अपने अधीन करके ही उत्तरी भारत पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की थी। इस संबंध में वेनसांग का वर्णन इस प्रकार है। कुछ शताब्दी पूर्व मोही लोकुलो नामक राजा, जिसकी राजधानी या नगर थी, भारतीयों पर राज्य करता था। सब पड़ोसी राज्य उसके अधीन थे। उसने अपने संपूर्ण राज्य में बौद्ध संघ के पूर्ण विनाश की आज्ञा दी थी। जब मगन नरेश बालादित्य ने मिहिर कुल के क्रूर दमन और अत्याचारों के विषय में सुना, तो उसने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा का सुदृढ़ प्रबंध किया और कर देना बंद कर दिया। इस पर मिहिर कुल ने बालादित्य पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का सामना करने में असमर्थ बालादित्य पर्वतों और मरुस्थलों की ओर भाग गया। अंत में बालादित्य ने मिहिर कुल का सामना करने का निश्चय किया। उसे सफलता मिली और उसने मिहिर कुल को जीवित बंदी बना लिया। बालादित्य मिहिर कुल की हत्या करना चाहता था, परंतु राजमाता के अनुरोध पर उसने ऐसा न किया और मिहिर कुल को मुक्त कर दिया। मिहिर कुल ने कश्मीर में शरण ली और कुछ समय पश्चात वहाँ के राजा को मार कर स्वयं कश्मीर नरेश बन गया। इसके पश्चात उसने गंधार नरेश को भी मार डाला और गंधार पर अधिकार कर लिया। वेनसांग के वर्णन से प्रकट होता है कि किसी समय मिहिर कुल ने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना अधिकार कर लिया था और गुप्त सम्राट भी उसे कर देता था। उसकी राजधानी शाकल थी। सुंग यून के अनुसार गंधार उसके अधीन था। काशमस सिंधु नदी को हुर राज्य का पूर्वी सीमा बताता है, परंतु यह सीमा मूल हुर राज्य की ही हो सकती है, क्योंकि तोरमार और मिहिर कुल दोनों ने ही उत्तरी भारत में अपना राज्य विस्तार किया था। मिहिर कुल के शासन के 15वें वर्ष के ग्वालियर अभिलेख से सिद्ध होता है कि मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग मिहिर कुल के अधीन था। मिहिर कुल का विजेता। इस प्रश्न पर मतभेद है कि मिहिर कुल का विजेता कौन था। पहला, वेनसांग के वर्णन से प्रकट होता है कि मिहिर कुल को गुप्त सम्राट बालादित्य ने पराजित किया था। दूसरा, मंदसौर अभिलेख का कथन है कि मिहिर कुल को यशोधर्मा ने हराया था। तीसरा, इन परस्पर विरोधी कथनों को समझाते हुए स्मित महोदय ने यह मत प्रतिपादित किया था कि नरसिंहगुप्त बालादित्य और यशोधर्मा दोनों ने आपस में एक संधि कर ली थी और दोनों ने सम्मिलित रूप से मिहिर कुल को परास्त किया था। चौथा, फिल्ट महोदय का मत है कि मिहिर कुल को पूर्व में बालादित्य ने पराजित किया और पश्चिम में यशोधर्मा ने। इस बात पर भी मतभेद है, इससे पहले किसने पराजित किया। पहला, हेरोस और उसके पश्चात मजूमदार ने यह मत रखा कि मिहिर कुल को पहले यशोधर्मा ने हराया, परंतु उसे पूर्ण रूप से पराजित करने का कार्य बाद को बालादित्य ने किया। दूसरा, इसके विरुद्ध राय चौधरी का मत है कि मिहिर कुल को पहले बालादित्य द्वारा हराया गया और फिर यशोधर्मा द्वारा। हम पहले कह चुके हैं कि मालवा में यशोधर्मा का उदय हुआ और उसने अपनी दिग्विजय में गुप्त नरेश बालादित्य और हुर नरेश मिहिर कुल को दोनों को पराजित किया। दूसरे, मंदसौर अभिलेख में की तिथि 532 है, अतः अनुमान किया जा सकता है कि इस तिथि के पूर्व ही मिहिर कुल यशोधर्मा द्वारा पराजित किया जा चुका होगा। मंदसौर अभिलेख का कथन है कि यशोधर्मा द्वारा पराजित होने के पूर्व मिहिर ने स्थाणों के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने भी अपना सिर नहीं झुकाया था। इस कथन से भी यह प्रकट होता है कि मिहिर कुल को सर्वप्रथम यशोधर्मा ने पराजित किया। इस विजय के कुछ समय पश्चात यशोधर्मा की मृत्यु हो गई। मिहिर कुल के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने अब फिर सिर उठाया और भारतवर्ष पर आक्रमण किया। इस बार उसे सफलता मिली और उसने गुप्त सम्राट बालादित्य को पराजित करके उसे कर देने के लिए विवश किया, परंतु जब उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए तो बालादित्य ने उसका विरोध किया, उसे कर देना बंद कर दिया और कालांतर में बंदी बना लिया। ग्वालियर अभिलेख से प्रकट होता है कि मिहिर कुल ने कम से कम 15 वर्ष तक राज्य किया था। वह एक बौद्ध विरोधी और अत्याचारी शासक था। पहला, सुंग यून कहता है कि इस राजा का स्वभाव क्रूर और प्रतिशोधात्मक था। वह बौद्ध धर्म में विश्वास न करता था, वरन दैत्यों की पूजा करता था। दूसरा, वेनसांग के वर्णन से प्रकट होता है कि मिहिर कुल ने बौद्ध धर्म के विनाश का प्रयत्न किया। उसने 1600 स्तूपों और विहारों को ध्वस्त कर दिया और 9 कोटि बौद्ध उपासकों की हत्या कर दी। अन्य साक्ष्य से प्रकट होता है कि मिहिर कुल शैव था। पहला, मंदसौर अभिलेख का उल्लेख है कि यशोधर्मा द्वारा पराजित होने के पूर्व मिहिर कुल ने भगवान स्थाणू के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष अपना शीश न झुकाया था। दूसरा, मिहिर कुल की कुछ चांदी की मुद्राओं पर नंदी और त्रिशूल के चित्र हैं और उन पर जयति विश्वध्वजा अथवा जयति मिहिर कुल लिखा हुआ है। तीसरा, राज तरंगिणी का कथन है कि मिहिर कुल ने मिहिरेश्वर के मंदिर की स्थापना की थी।